તારીખ 15/10/1994 શ્રી સમયસર કલશ ટીકા શ્લોક નંબર 182 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 96
પરિણામ પ્રકાર સંસ્કાર સંસ્કારિત હો જાતા હૈ વ્યક્ત સંસ્કાર ચાલુ રહેતા સંસ્કાર કા મતલબ યોગ્યતા નહીં હૈ વ્યક્ત યોગ્યતા નહીં હૈ વ્યક્ત યોગ્યતા તો યહાં સંસ્કાર કા નહીં હૈ સંસ્કાર કે જો અર્થ હોતે હૈ વો સંસ્કાર અવ્યક્ત યોગ્યતા મેં પડ જાતે હૈ બન જાતે હૈ વો આગે જા કરકે વ્યક્ત હોતે હૈ જૈસે કિસી મેં સ્વભાવ કા સંસ્કાર બોલે યોગ્યતા મેં કોઈ ફરક નહીં દિખતા હૈ તો અવ્યક્ત યોગ્યતા મેં સંસ્કાર હુઆ હૈ સ્વાનુભવ કરેગા બિના જાને કે નિમિત્ત અનુભવ કરેગા પતા ચલેગા સંસ્કાર થા પૂર્વ સંસ્કાર થા તો બહાર આ ગયે તો એ બાત નહીં હૈ સંસ્કાર મેં યહ બાત હૈ ભારતીય સ્વરૂપ કા અનુભવ હોતા હૈ પરિણામ મેં શુદ્ધ ચૈતન્ય માત્ર પ્રગટ ભાવ નિરંતર સદા હિ વર્તતા રહેતા હૈ મતલબ ઇસકે પરિણામ વ્યક્ત પરિણામ સંસ્કારિત હો ગયે સંસ્કાર કોઈ અગર ઓરિએન્ટેડ પોઝિશન જિસકો બોલતે હૈ અનુભવ હોને કે બાદ વો ભૂમિકા તૈયાર હોઈ ઓર સર્વિકલ્પ દશા મેં સાંસારિક કાર્યો કા પુનઃશુદ્ધ વ્યવહાર કરતે હુએ ભી જિસકો મેં શુદ્ધ ચૈતન્ય માત્ર આત્મા હું ઐસા ઉનકા પરિણામ મેં ભાવ સંસ્કારિત ભાવ ચાલુ રહેતા હૈ
સંસ્કાર ભૂલગે ભૂલગે
સંસ્કાર નહીં વર્તમાન મેં અનુભવ હુઆ તબ સે વો સંસ્કાર મેં શુદ્ધ ચૈતન્ય માત્ર હું એસા ભાવ ચાલુ રહેતા હૈ ઉસકો સંસ્કાર યહ કહેતે હૈ થોડા સા ભાવાર્થ ઇસ પ્રકાર હૈ જિસકે શુદ્ધ સ્વરૂપ કા અનુભવ હોતા હૈ જીવ કો એસા પરિણામ સંસ્કાર હોતા હૈ કે મેં શુદ્ધ ચૈતન્ય માત્ર હું નિશ્ચય છે એસા હી હું ખરેખર વાસ્તવિક એસા હી હું જો ભી મેરે ઉદય ચલતે હૈ મેરે ભાવ ચલતે હૈ એસા મેં નહીં હું લક્ષ્ય હોય उसके भी मैं शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ ऐसा एक परिणाम परिणति चलती है। और वैसे अनुभव के बाद यह भी कमी चलती है। प्रश्न वो है कि सम्यक सम्यक मुमुक्ष और सम्यक को प्राप्त ज्ञानी दोनों के जो ऐसे परिणाम है मिलते जुलते तो फिर अंतर क्या है, ये प्रश्न है। ठीक है, एक न्याय से दोनों की दशा में कोई खास अंतर नहीं है, एक न्याय से उतना अंतर नहीं, एक न्याय से थोड़ा अंतर भी है। तो बलन की अपेक्षा से देखा जाए एटीट्यूड जिसको कहते हैं तो ज्ञानी और सम्यक सम्मुख को तो साथ अंतर नहीं है, ऐसा ही प्रयोग ज्ञानी का चलता है जैसा सम्यक सम्मुखता वाला का चलता है। फिर भी वहां अनुभूति जो होती है और कर्म के जो परिणाम में सम्यक सम्मुख मनुष्य को ये ऐसा जो चलता है और उदय भाव चलता है उसमें अंतर क्या है कि उसको स्वरूप के साथ एकत्व प्राप्त हुआ नहीं और प्रभाव के साथ एकत्व मीटा नहीं, भले ही पर के साथ का एकत्व अति मंद है लेकिन है तो सही। हम दृष्टांत के तौर पर कह सकते हैं कि सदाई हुई है शादी नहीं हुई है, सदाई होने के बाद बोला जाएगा कि ये पति पत्नी है, ये स्त्री विशेष है, ऐसा कुछ है, ऐसा ही बोला जाएगा, ये शादी नहीं हुई है। ऐसे इनका सम्यक्त्व निश्चित हो गया है और परिणाम का एटीट्यूड बिल्कुल ज्ञानी जैसा हो जाता है फिर वो एकत्व नहीं होता। तो बहुपयोग होने पर ही पहला पहला एकत्व देखता है, सोचता है, सोचता है, अभाव होता है, इससे पहले अभाव को प्राप्त नहीं होता। इसलिए उनको मिथ्यात्व है और मध्य मिथ्यात्व है, सम्यक्व नहीं है, सम्यक्व होने के बावजूद भी सम्यक्व नहीं है, ऐसे मिथ्या तो लेकिन मन मिथ्या तो है, एकत्व है मन एकत्व है और अनंता में बुद्धि आदि कारण प्रकृतियों का आभार हो गए हैं तो तथा उसी की जीवन में है। तो 143 व्याख्या में इसी ग्रंथ में आचार्य महाराज ने ग्रंथ में तो लिखा है क्या कहा कि समय समय को हुआ तो क्या हो गया, क्या वहां भी आचार्य महाराज उसको तो रुक जाए ऐसा नहीं चाहते हैं। समय संतुष्ट हुआ तो क्या हो गया ऐसा 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 प्रश्न होता है तो क्या नहीं चाहता। संख्या 212 राधा का मसाला है किंतु इससे क्या गंगा जी ने पर देखी सू जो आत्मा उन भैया में नई पत्थर को पार कर चुका है वही सब बता रहे हैं जाता द्वारा कहते हैं तो दोनों लोगों के पक्ष को पार नहीं कर चुका है इससे एक पक्ष है स्वरूप का भी उसको पक्ष है निष्पक्ष नहीं हुआ है तो बर्दाश्त नहीं करते आचार्य द्वारा श्री गुरु वो मान्य नहीं करते इससे क्या इनके इससे क्या उसको व्यवहार में का पक्ष छुपा है मालूम है निश्चय स्वरूप का पक्ष लक्ष्य में आने से पक्ष हो गया है मालूम है और उसके प्रति परिणाम उसको बार बार लग रहे हैं, मालूम है, इससे क्या वो आत्मा दोनों में पक्ष को पार कर चुका है और निर्विकल सानुभूति में आया है, वही समयसार है, उसको समयसार करेंगे, उसको समय दर्शन पर नाम देंगे, उसको समय ज्ञान पर नाम देंगे, उसको प्रणाम नहीं देंगे, इससे क्या एक ही सूत्र। तो पेशी सूत्र को तो प्रवचन करते थे, दर्शन कर प्रवचन करते अनादि से जीव में व्यवहार में का पक्ष में थोड़ा है, पर्याय के होने से पर्याय का पक्ष रहा है, और अपने सिद्धात्मा लक्ष्य पहचानने में नहीं आया तो उसका पक्ष नहीं आया। सबने सदमुखता के काल में यानी पहचान होकर के लक्ष्य होने से उसको विषय का पक्ष आता है, किंतु पक्ष में दक्ष होता है, दक्ष में चतुर होता है, पैसा चतुर होता है तो पक्ष में हटकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा, तो दिखाने के लिए बोला कि उनको भी ऐसा है, श्री गुरु तो ऐसा कहते ही है लेकिन खुद को भी ऐसा भाव के इससे क्या लक्ष्य हो गया, स्वरूप लक्ष्य में आया लेकिन अनुभव तो नहीं हुआ, तो इससे क्या हो गया, जब अनुभव होगा तो बोलेगा कि ठीक है समय दर्शन तो आ गया लेकिन इससे क्या, मुझे दिशा देखो हम तो इनके पास नहीं है, ऐसे मुझे दशा होती है तो इसको कोई बोला नहीं, कोई उपाधि नहीं, निर्णय होकर के खुलते हैं में और अंदर में प्रचुर आनंद की दिशा, इतनी शांति की दिशा के बाद भी कोई परिस्थिति उत्तर परिस्थिति मालूम पड़े नहीं, तो गुरु दशा के लालायक हो जाते हैं, गुरु दशा प्रकट हो जाती है तो बोलता कि इससे क्या हो गया, देखो सर्वज्ञ केंद्र में देखो पूरा पूरा आनंद मिलता है हमको, तो पूरा मिलता है नहीं बोल पाता, हमको अगर नहीं बोल पाता पूरा चाहिए हमको, तो हमारा अधिकार है पूरे का तो बोला हम नहीं लेंगे, जो मार्ग है पूर्णता के लक्ष्य से शुरू हुआ है, पूर्णता नहीं होगी वहां तक कोई जंप रहने वाला नहीं है, जंप रह करके बैठ जाए कि चलो हमको इतना मिल गया अब हमको वादा नहीं है ठीक है, वो बात साधक को कभी होती नहीं, ऐसे बात होने वाले साधक होते भी वो परिणाम स्वयं बाधक है, इसलिए पुरुषार्थ की कमी है, अनुभव के लिए जितनी मात्रा में जितनी डिग्री में पुरुषार्थ उठना चाहिए उतनी डिग्री में नहीं आया, आएगा से जहां तक नहीं आए वहां तक तो है, लेकिन हम घर से निकले मंदिर आने के लिए गाड़ी हमारी फुल स्पीड में चलती है, फिर भी कुछ न कुछ में टाइम लगेगा, 5 मिनट वाली 4 मिनट 10 मिनट 3 मिनट तो लगेगा, 2 मिनट तो लगेगी, जहां से हमने चाबी दिया और उसी वक्त हम मंदिर पहुंचने वाले नहीं है, हम जाते क्या गाड़ी स्टार्ट होते ही मंदिर पहुंच जाते क्या, तो घर से निकले कितनी देर स्पीड रहेगी, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट तो होने वाली रहेगी, ऐसे सभी सन्मुख वाला आगे बढ़ ही रहा है, तो की तो आखिरी सेकंड की बात है, तो वो तो आखिरी के सेकंड में जो अनुभव होता है उससे पहले के कुछ समय की बात है, अगर चल नहीं देते हैं खुद को पता नहीं चलता है, तो किसी को 5-15 दिन लगता है, किसी को 5-15 घंटा लगता है, किसी को महीना महीना लगता नहीं है, छह महीने तो उसको उत्कृष्ट मर्यादा है, इससे ज्यादा नहीं है। इसलिए कि उनके लक्ष्य में शुद्धात्मा आया है, अनंत सुख के खाने को देखता है और सुख के लिए बहुत तड़पा है, आगे बहुत तड़प चुका है, जी भर भर के रोया है। हम देख लिया है छोड़ेगा कैसा, भूख भी लगी है और भोजन भी तैयार है, हम खाने में देर क्यों लगाएगा, खाने में देर नहीं लगेगी उनको। तो अल्पकाल अनुभव को प्राप्त होता है, तो जितना भी अल्पकाल लगता है उसको, तो उसके प्रति आगे बढ़ता सुनता आगे बढ़ता जाता है। सहज रूप से जो सहज रूप से पुरुषार्थ बढ़ता है, उसमें कोई कृत्रिमता करके बढ़ाया जाए वो व्यवस्थित स्थिति नहीं है। और सबसे दूसरी बड़ी बात तो वो है कि उनका लक्ष्य अपने पर्याय के प्रति नहीं है, स्वरूप लक्ष्य में आने से स्वरूप की इतनी मुख्यता वर्तती है, इतनी मुख्यता वर्तती है, तो पर्याय को दुर्लक्ष करता है, भगवानी का पक्ष छोड़ दिया है, भगवानी का विषय है पर्याय को उसका पक्ष ही छोड़ दिया है। तो उनको मालूम है क्या हो रहा है, वो मालूम तो पड़ जाता है, क्योंकि पर्याय के ऊपर की सपाटी में है और स्वरूप के नीचे तलवा में है। तो वो जो स्वरूप को स्पर्शता है उसको ऊपर के सपाटी का स्पर्श तो सही भी हो जाता है, तो मालूम है कि पर्याय में क्या हो रहा है, न उसमें प्रमाद है, न उसमें कोई कृत्रिम जल्दबाजी भी है, दोनों से एक भी नहीं होता। तो अपने शरीर के मुख्यता में उनके परिणाम के प्रवाह बैठा है कि किसी तरह बैठा है और अस्पताल में अनुभव को नहीं देता, अनुभव में उसको आत्मिक आनंद का अनुभव होने के बावजूद भी आनंद की मुख्यता नहीं होती, तो अपूर्व आनंद है। पहला संयुक्त में जो आनंद आया वो अपूर्व आनंद है, ऐसा आनंद अनंत काल में जीवने से भी अनुभव में लिया नहीं। ऐसा अपूर्व आनंद आने के बाद प्रदेश प्रदेश से आनंद के शांति के फुहारे सुनते हैं, फिर भी उसकी मुख्यता नहीं होती, क्यों? इससे अनंत गुण परमानंद रूप स्वयं ही है, इसकी मुख्यता करें या इसकी मुख्यता करें। तो उदाहरण मैंने या उसको शुद्धमा अलंकार करें तो ये परमानंद की मूर्ति है, स्वयं परमात्म ग्रह है और ये परमानंद की मूर्ति है, और एक समय के समय दर्शन आदि के आनंद के पर्याय है, तो उसको चिपकने वाली, उसके प्रति जाने वाली, उसकी सेवा करने वाली उसकी दासी है, ये राजा है, महिला राजा की आएगी तो राजा की सेवा करने वाली दासी की आएगी। पहले तक समझने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा आत्मस्वरूप अद्भुत से अद्भुत है, इतना अनंत महिमावंत है कि जिसके आगे सभी दर्शन क्या केवल ज्ञान के पर्याय नहीं, कुछ नहीं है, कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा है, इतना मान है, इतना मान है। तो इसकी मानता कोई बताए बताना चाहे तो सर्वज्ञ भी जीवित होने में बता सकते नहीं, किसी की कथा में जाने कहते हैं कि ऐसा अनुभव करने वाले को निर्विभाग महिमा आती है, विकल्प वाली महिमा नहीं आती है, मेरी विकल्प महिमा उसके चलती है, महिमा का प्रकार है वो मेरी विकल्प आता है, विकल्प वाली महिमा प्रकार नहीं है। तो मैं उसको बार बार विकल्प करके स्मरण करके महिमा लगाई नहीं पड़ती है, उसको तो चिन्ह ग्रह से अंकित मेरे विभाग चैतन्य परिवर्ति के साथ शुद्ध चिति स्वरूप शांति अचिंत्य करती है, अचिंत्य महिमा है उसकी, ऐसी महिमा चलती है। ऐसा अनुभव किस प्रकार से होता है कि जितने कर्म के उदय की उपाधि है उसको अनादि काल से आपा जानकर अनुभव करता है, तो कर्म जानकर स्वामित्व छोड़ दिया, क्या विपरीत कर गए तो अनादि से ज्ञान में आने वाले पदार्थ की उपाधि कर लेता था, उपाधि छोड़ दिया। ज्ञान के जो स्वाभाविक परिणाम है जिसको ज्ञाता भाव कहते हैं, तो अनुभवी पुरुष को ज्ञाता भाव जो है वो तो निरुपाधिक परिणाम है। मात्र जानना पदार्थ सामने कुछ भी हो, मात्र निरुपाधिक रूप से जानना, तो फिर उसके निर्मलता में उसका प्रतिबिंब देना जाता है, तो मात्र जानने में आता है। उस पदार्थ में कुछ करना, व्यवहार करना, आगे पीछे करना, अच्छा बुरा करना, ऐसी उपाधि ज्ञान ग्रहण नहीं करता, ऐसी उपाधि ज्ञान में नहीं आते, ऐसा अनुभव ही का परिणाम हो जाता है, तो ज्ञाता दशा बन जाता है। पर बात दूसरे पदार्थ का तो ज्ञाता रहता ही है, अपने विकल्प रूप परिणाम को भी ज्ञाता रहता है। अपने उदय के परिणाम को भी ज्ञाता रहता है, तो प्रसन्न रहता है, वर्तमान मृत कैसा है, इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है। पत्थर चार सौ पैदल सप्ताह, पांच सौ पचास पत्थर में प्रसन्नदास भाई को पांच पुरस्कार लिखे हैं। पांच पुरस्कार इसलिए लिखे कि वो लिफाफा लिखने को बैठे नहीं, जब विकल्प चला तो पुरस्कार लिखने का चला, शायद विकल्प लंबा गया तो दूसरा लिख दिया, विकल्प शांत नहीं हुआ तीसरा लिख दिया। एक पुरस्कार लिखते वक्त बाद में लिखा जाएगा वो क्रेडिट नहीं था उसका, क्या मतलब है? लंबा दौड़ा पत्र लिखने का एक प्लानिंग नहीं था, फिर भी ये विकल्प सेलेक्ट करा तो उन्होंने रोका नहीं, क्या विकल्प शायद चला तो रोका नहीं, पर नहीं चले तो उठाते नहीं, करते नहीं, पर चल जाते तो रोकते भी नहीं, क्यों? तो नहीं उठता है उसका भी जाता है, तो उठता है उसका भी जाता है। तो कितनी भाषणों में बात आ गई, आज जो आठवां पत्र लिखते हैं, आठ पत्र लिखिए, आठ पुरस्कार लिखा एक विषय एक विषय, चित ऐसे उदय वाला कभी हो रहता है, अब उसको नहीं है। ऐसे उदय वाला जब चित्त का जो परिणाम होता है तो हो रहता है, अब उसमें नहीं है। आज अनुक्रम से वैसा उदय उदय है, उस उदय के अनुसार लिखा है, तो लिखने का उदय भाव आ गया, उस उदय के अनुसार लिखा गया तो लिखा गया, न हमने कोई लिखने का कर्तृत्व किया है, उसमें लिखने का विकल्प को मिटाने का भी प्रस्तुत हो गया है, तो विकल्प करना योग्य नहीं है, लेकिन मिटाना तो योग्य है कि नहीं है, ये सवाल है। बहुत गंभीर बातें हैं, भाषा सीधी साधी है, उसमें रहस्य भरा है। जाने का परिणाम तो खोलते हैं और परिणाम खोलो तो देखो, हम विकल्प कर्तृत्व से तो पत्र लिखते नहीं, तो विकल्प चल जाता है, उदय भाव आ जाता है तो उसको रोकते भी नहीं, करना भी हमारा काम नहीं, रोकना भी हमारा काम नहीं। अगर रोकना हमारा काम होता तो करना हमारा काम हो ही जाता, तो ये बात सब ज्ञान दशा कैसे ज्ञान दशा होते हैं। बात कितनी सीधी साधी है, क्योंकि उनके लिए गहराई तो होता है, क्या करेंगे बने उन्हें हाँ लिखा गया, लिखा गया तो लिखा गया, हम उसमें आए थे तो हमारे स्वीकार
नहीं किया, स्वीकार नहीं किया
तो विकल्प हुआ उसका भी ज्ञाता दृष्टा और मिटा उसका भी ज्ञाता दृष्टा, सद्भाव का भी ज्ञाता दृष्टा, अभाव का भी ज्ञाता दृष्टा। इस विकल्प को उठने के लिए हम आधार नहीं और मिटने का भी हमारा आधार नहीं है, तो स्वयं होता है अपने अस्पताल में, स्वयं मिटेगा अपने अस्पताल में, तो उसको आधार तो है नहीं, रहेगा कैसे।
इतनी बात उनके ख्याल में आई होगी, इतनी बात उनके ख्याल में आई होगी कि इसमें एक दुर्बलता है।
ठीक है, योग ज्ञान का ग्रहण है, क्या विकल्प उठा उतनी कमजोरी और उसमें नहीं रहा तो उठा दे, उसकी कमजोरी मालूम करी वो भी ज्ञान कहते हैं, उसमें ज्ञाता दृष्टा में क्या है, विकल्प तो यहाँ से चलता है, हमारा जो प्रकरण चलता है। तो राजगंज जी ऐसा कहते हैं कि जितनी सर्वोदी सर्व की उपाधि थी उसका स्वामित्व नहीं रहा, तो उदय भाव है सर्वाधिक परिणाम है, तो कर्म के साथ उदय के साथ कर्म प्रकृति के उदय के साथ उसका जुड़ाव है, खिंचाव है, थोड़ा प्रकत्व नहीं है लेकिन खिंचाव है, तो उदय उठता है, स्वामित्व नहीं है, फिर भी उसका स्वामित्व नहीं है, वहां भी भिन्न रहते हैं, तो जो बाहर जाता है तो एकत्व तो साधता नहीं हो,
बैठते थे
ट्रेनिंग जाता था और देते थे, तो कितने ही पत्र अधूरे छोड़िए, वही निकल चलता है तो हम चलाएंगे नहीं, चलता है तो हम रुकेंगे नहीं, तो हम हमारे में चलते हैं, निकल निकलते हैं हम हमारे में, निकल अनुसार कार्य हो रहे नहीं, हमारा सिद्धांत नहीं है, अतः तो दृष्टि प्रकाश पत्र में निकल के कार्य हो रहे ही वो हमारा सिद्धांत नहीं है, ज्यादा हो तो बैठा कर देखो हफ्ते प्रकार होता है, इस प्रकार कहते हैं कि सर्वपति भूतवा जितने कर्म के उदय की उपाधि है उसको अनादिकाल से आपा जानकर सर्वम प्राप्त किया, जितने उपाधि उसको भूतवा ज्ञान कर दिया, आपा जानकर अनुभवता था तो चंद्र ने जानकर उसका स्वामित्व छोड़ दिया। ऐसा है चंद्र में तो व्यक्ति भेदन शक्य थे, वो कर्मों को कर रहे वस्तु है जिनसे भिन्न करने को शक्य है अर्थात दूर किया जा सकता है, ऐसी कोई चीज नहीं है कि उसको उसका भेद ज्ञान नहीं कर सके, ऐसी कोई चीज नहीं है, उसमें आग नहीं लगानी है कि हम तो सामान्य मनुष्य है, हम ऐसा कार्य कैसे कर सकेंगे, ये तो महात्माओं का काम है, महापुरुषों का काम है, जंगल में त्याग करके योगी योगी होते हैं उनका काम होगा, हम तो रहे संसारी गृहस्थी, हम तो कर सकता है, देव भी कर सकता है, खुद किसी में से ज्यादा कभी सुनता है। उसमें क्या है कि पंद्रह में से वर्तमान इनके जो दीनता के परिणाम चलता है मनुष्य को, उस परिणाम की दीनता को अनुभव करते हुए उनको ऐसा लगता है कि मेरे परिणाम बहुत कमजोर है, बहुत बेटा मेरे में आ गई है, छोटे मोटे चीज के लिए मैं आखिर जाकर ले जाता हूँ, तो उसका मान कार्य तो मेरे से कैसे होगा, ये तो महान योगियों का या महात्मा पुरुषों का काम होगा, मेरा तो महापुरुषों का काम, मैं थोड़े महान महापुरुष हूँ, तो मैं सामान्य मनुष्य हूँ जिसको छोटे मोटे चीज चाहिए, इसके बिना नहीं चले, इसके बिना नहीं चले, उसको बेटा का अनुभव करते हुए तो आग लगा देता है, खुद से आग लगाता है, शंकर इसलिए कहते हैं कि जान नहीं कर तो उसको ये लगता है तो मेरी कैपेसिटी नहीं है इतना महान कार्य करने की, ऐसी आग कभी नहीं लगाना, तो बेकुम शक्ति दे आचार्य महाराज प्रेरणा देते हैं तो तुम देख सकते हो, तुम छोड़ सकते हो, सर्वथा भिन्न है इसलिए तुम उसका भेद अनुभव कर सकते हो। हाँ तुम ये अवश्य कह सकते हो कि मुझे बहुत लगाव है, क्या करें इन चीजों से मेरा इतना लगाव है, मेरे उन्हें जो भी सामग्री है मकान घर परिवार आदि जो भी कुछ है इनके बादरी इससे मेरा लगाव है तो मैं इसको भेदपना कर सकूँ, ऐसा लगता नहीं है, मेरा बहुत तीव्र है, इस मोह को देखते हुए मुझे लगता है कि मैं इसको भंग कर सकूँ, इसको इसका स्वामी को छोड़ सकूँ, कि मोह को छोड़ सकूँ, अपना पर छोड़ सकूँ, ऐसा मुझे नहीं लगता है, तो कभी कभी जीव अभिप्राय मान लेता है कि मेरे से नहीं होगा, कि मेरे से नहीं होगा, कि आड़ नहीं लगाना, कभी रास्ता खुला रख लेना कि भंग करने की शक्यता है, अपने को छोड़ने की शक्यता है, तुम सुनेंगे ऐसी मारोगे तो ऐसी मारोगे कि जिससे अपने को किया है कलेक्ट करके देखोगे नहीं, किससे अपने को किया था ऐसे ही नहीं देखता है, मृत्यु में मेरे से नहीं देखता है, नया लोग आता है तो उदय भाव सुख जाता है, कभी तो उसी भाव में ऐसा होता है तो उदय में समुद्र हो जाता है बाप बेटे का, पति पत्नी का, लेकिन कभी ऐसा देश का प्रसंग बन जाता है, उदय छूट जाता है, देखते उससे लगाव नहीं रहता है, हमारे कोई लेना देना पर हमारा रास्ता तो उसका क्या हुआ नहीं हम देखेंगे नहीं, तो जाता है तो उदय भाव छूट गया, तीस तो की वो है कभी तो उसी भाव में उदय भाव छूट जाता है, बहुत बदलने से तो उदय भाव छूट जाएगा क्योंकि उसका उदय वहां पूरा हो गया, तो ऐसा तो नए भव्य उसको देखेंगे, जाते स्मरण होगा, पता चलेगा कि हमारा वो है, बाहर नहीं आएगा, लोगों को नहीं आएगा। तो उम्मीदी है आगे हमको बता दे कोई तुम्हें ये फलाने व्यक्ति आपका फलाना फलाना था, लेकिन हम आपको मालूम नहीं, हमको मालूम नहीं, होगा भाई हमको तो कुछ मालूम नहीं है, तुम ऐसे ही आएगा ही नहीं, तुम्हें मालूम नहीं है सब क्या करेंगे। तो स्वामी को छूट गया, लेकिन दूसरी जगह स्वामी को किया वो भी पर ग्रह था, तो गलती तो होती नहीं रही। स्वरूप में स्वामी को होने से उदय भाव छूट जाता है, तो सभी प्रकार से छुटा है उसको, पिता भी छूट करके मेरे पास एक भाव का पांच पिता भी बनाएगा उसको, वो चाहता है कि वो मिलेगा उसको। किस कारण से उसको उसकी शक्यता है, भेद करने की शक्यता है, तो किस कारण से है कि सो लक्षण बला, सो लक्षण के सहाय से, सो लक्षण से नहीं बोला, सो लक्षण बला, सो लक्षण का आधार लेने से बल मिलता है, मेरे के मेरा चैतन्य लक्षण है उसका आधार लेने से मुझे बल मिलता है कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। लक्षण चेतन, सर्वदा लक्षण अचेतन, ऐसा भेद करके, ऐसा भेद उसकी सहायता से चालू करना है, जीव का लक्षण चेतन, कर्म का लक्षण अचेतन, ऐसा भेद उसके सहाय से, उसके बल से, जैसे कोई कार्य करने का जिम्मेवारी का कार्य करने का कुछ न कुछ प्रकार से बलता तो चाहिए, तो वहां भिन्न करने के उनका कार्य किस बलबूत से करते हो, ये प्रश्न उठाया है किस कारण से। तो लोगों का लक्षण भिन्न भिन्न है, हमारा लक्षण भिन्न है, इसके आधार से हम भिन्नता करते हैं, तो कल्पना नहीं करते हम, तो हम कल्पना व्यवहार में नहीं है, हमारे पास ठोस आधार है, इसके बल से करते हैं। कहता हूं मैं तुम्हें कार्यकारी व धर्मा व गुणा विद्युत विद्युत उचित भावे काटन विदान, जो आत्मा कार्यकारी में इसे करते आत्मा, आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा में सब कारक है, ऐसा भेद अथवा धर्म उत्पाद में ध्रोह रंग पर्याय ऐसी भेद बुद्धि अथवा गुना ज्ञान गुण दर्शन गुण शुभ गुण इत्यादि अनुप गुण रूप भेद बुद्धि, जो ऐसा भेद भजन के द्वारा उपजाया हुआ हो सकता है, तो वचन मात्र भेद हो सदा विचितम, विकल्प मात्र भेद हो, वचन मात्र भेद हो, परंतु चीति भावे का विदान है, चैतन्य भाव में तो कोई भेद नहीं है। बहुत सरस पिता बहुत सुंदर की है राजमंदिर जी ने, देखो कभी विकल्प से और वचन से कभी कारकों का भेद का विकल्प आता है कि आत्मा ने कार्य किया, आत्मा ने किया, आत्मा अपने आत्मा से कर दिया किसी की मदद के बिना, कभी ऐसा विकल्प आता है कि आत्मा में ज्ञान दर्शन में बहुत गुण है, कभी ऐसा विकल्प आता है कि आत्मा रूपा में धर्म स्वरूप है, ये सब प्रकार के भेद विकल्प वचन के द्वारा उपजाया हुआ उपजता है, अगर बोलने का प्रकाश प्रसंग होता है तो वचन को वचन पूर्वक होते हैं, बिना वचन को वचन की प्रवृत्ति नहीं होती, तो वचन के द्वारा उपजाया हुआ उपजता है, तो वो वचन मात्र भेद हो हम उसका भी स्वामी नहीं है, हो तो हो उनके स्थान पर। परंतु चैतन्य सत्ता में तो कोई भेद नहीं है, हमारे एकाकार चैतन्य सत्ता में हमें कहीं भेद अनुभव में आता नहीं, भेद का अनुभव हमको होता नहीं। कोई विद्वान ऐसा प्रश्न कर सकता है कि अंदर में भेद तो है, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि के भेद है, तो ज्ञानी कहते हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र विद्यमान है ही नहीं। तो साथ में कैसा दिखाई थी कि नहीं दिखाई थी कि नायक आत्मा को तो दर्शन ज्ञान चारित्र विद्यमान है ही नहीं, तो विकल्प तो नहीं हो जाएगा,
विकल्प नहीं
है,
उसका विकल्प नहीं है,
इसका विकल्प भी नहीं और इसका भेद रूप अनुभव भी नहीं। चार लड्डू खाते हैं तो शक्कर का अलग अनुभव करते हैं, आटे का अलग अनुभव करते हैं, मेवा का अलग अनुभव करते हैं, क्या करते हैं, घी का अलग अनुभव करते हैं कि नहीं, हम तो लड्डू खाते हैं, लड्डू में सब चीज आ गई, चाहे सैकड़ों चीज डाली हो लड्डू खाए तो सब आ गया, उसमें उसका स्वाद अलग उसका स्वाद अलग ऐसा तो लेते नहीं। जैसे ज्ञान का स्वाद अलग, सुख का स्वाद अलग, दर्शन का स्वाद अलग, ऐसा अलग अलग अनुभव का स्वाद हम नहीं लेते, हम तो एक साथ पूरा आत्मग्रह का अवैध स्वाद लेते हैं। अखंड चेतना का अनुभव भी अखंड होता है, खंड खंड नहीं होता, अखंड चेतना का अनुभव अनुभव को भी अखंड कहते हैं, खंड खंड नहीं कहते। जैसा वचन मात्र भेद हो तो हो चैतन्य सत्ता में, परंतु चैतन्य सत्ता में, परंतु मैंने हमारे में चैतन्य सत्ता में धर्म दर्शन नहीं है, परंतु हमारे आत्मा में हमारे में तो करके लिखा है, तो हमारे में तो कोई भेद नहीं है। तो प्रश्न तो उठाने जा रहे थे कि जब हम जानते हैं कि वस्तु भेदाभेद स्वरूप है, प्रपंचित भेद वस्तु के बंधारण में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस अस्तित्व है, तो फिर क्या भेद का ही अनुभव करना और भेद का अनुभव नहीं करना ये बात न्याय संपन्न है क्या? क्या ये बात अनुभव के तौर पे क्या सत्य का अनुभव है क्या असत्य का अनुभव है? अभेद है और भेद की अपेक्षा से भेद है, इसलिए वस्तु प्रपंचित भेदाभेद स्वरूप है। फिर अनुभव अकेले अभेद का क्यों? इसलिए कि हमारे सुख शांति के प्रयोजन में वही अनुकूल है, कोई भाव तो है हमारे उसका प्रयोजन नहीं है। मैंने ये गुण भेद धर्म भेद वस्तु के बंधारण के भेद विचारकों के भेद अप्रयोजन भूत है, प्रयोजन भूत नहीं है, बाधक है, इसका अनुभव करना हमारे अशांति को पैदा करते हैं, क्या आतंकता को पैदा करने वाले हैं, इसलिए हम इसका अवलंबन लेते
हैं। ज्ञान गुण क्या करता है
और
ज्ञान गुण क्या करता है? ज्ञान गुण है ये सब जो भेद है ये जानने में चाहते हैं,
ज्ञान जानता है किंतु अवलंबन लेता, जानना एक बात है अवलंबन लेना दूसरी बात है, जानने में कोई आपत्ति नहीं, अगर नहीं जानता तो कहेंगे कैसे, પોતાની શક્તિઓ તો વર્ણન કરી શક્યા નહીં નાના તો અત્યારે મહારાજ ને જાણા તો બતાવો લેકિન અવલોકન નહીં લ્યા જાણને જાણમાં એક વાત હૈ અવલોકન લેના દૂસરી વાત હૈ તો જાણતે નહીં હૈ વો જાણને મેં આ જાણતે હૈ ક્યાં આત્મા ઉસકો જાણને તો જાતા નહીં ઉપયોગ કો લે જાતા નહીં તો જ્ઞાન મેં આ જાતે હૈ તો આદા हमारे घर में बहुत जगह है बता लोग पहचानने की जगह है आ जाओ तो आ जाओ हम पी जाएंगे उसको लेकिन इसका अवलोकन लेंगे तो फिर बढ़ जाएंगे जानना एक बात है अवलोकन लेना दूसरी बात है ऐसी बात है तो जान लेते हैं ज्ञान किसको कहते हैं सुख किसको कहते हैं अस्तित्व किसको कहते हैं प्रबंध किसको कहते हैं प्रकाशक को किसको कहते हैं अनेक प्रकार के गुरु को जान लेते हैं कार्य किसको कहते हैं उसका गुरु किसको कहते हैं जानते हैं और वस्तु को पहचानने के काल में वो जान लिया है सबसे अन्वेषण काल है अन्वेषण काल में शोधन काल में सब पता चला नहीं पाए कि वस्तु में क्या क्या है क्या क्या नहीं है आराधना के काल में भी आराधना में तो वेद की आराधना होती है वेद की कभी आराधना हो सकती है वेद जानने के खाते में पड़े रहते हैं उपादेय और आदर करने के खाते में ग्रहण किया जाता है तो वो बात अलग है आराधना तो नहीं बनेगी निराधना
અપની
વસ્તુ અભેદ હૈ ભેદ અપની વસ્તુ નહીં હૈ પતા વૈશક અવિશક કા ફલસ આતા હૈ વૈશક અવિશક કા ફલસ આતા હૈ પરસ્પિતા નહીં રખી નહીં અંદર પરસ્પિતા ભી નહીં માતી હૈ यहाँ के बलिता को प्राप्त कराता है क्या यह भेद है तो बलिता को प्राप्त कराता है तो ऐसे गर्भ में मेरे गर्भ में तो बात ऐसा ऐसा करे શાસ્ત્ર બધા બરા અચ્છા શાસ્ત્ર હૈ કે અલમારી કમ પડતી બધી અલમારી ભી કમ પડતી બધા અલમારી તો વહી હૈ तो वो तो कोई सस्ती पूंजी नहीं है सही पूंजी तो वो है रखो के खाने है सब भेद अभेद दोनों का है अमृत में अभेदता है उदम भी अभेदता है कोई भेद नहीं मेरे विकल्प मात्र चैतन्य वस्तु का सत्व है क्या लिखा बोल वस्तु का सत्व क्या है कष क्या है उसमें जैसे गन्ना होता है उसमें से रस निकालते हैं तो छिलकों को फेंक देते हैं ये रस है उसका सत्व है ऐसे निर्विकल्प मात्र चैतन्य यही हमारे वस्तु का सत्व तो वो है तो सत्व है हमारा कष्ट उसमें है रस तक उसमें पड़ा है उसका हम अवलंबन लेते हैं, द्वैत का अवलंबन नहीं लेते। पांचवें व्याख्या के भावार्थ से कह सकता है कि पर्याय भी द्रव्य से ही भेद है, वस्तु नहीं है, है ना। पर्याय गुण दोनों ले लेना। वहां यहाँ जो बेचक के कैसे प्रश्न उठाते हैं बाहर से, यहाँ से कह सकता है कि पर्याय और गुण भी द्रव्य से ही भेद है, वस्तु नहीं है, तब फिर उसे उन्हें व्यवहार कैसे कहा जा सकता है। तो व्यवहार का निषेध कर दिया है, वो तो वस्तु का अंग है, उसके भेद है। वे जो प्रवचन करते थे इस बात पर कि पर्याय और गुण द्रव्य के ही भेद है, वस्तु नहीं, ऐसा कोई प्रश्न उठाते हैं, हमारा समाधान यह है कि ये अवस्तु है। प्रवचन करते थे कि वो अवस्तु है, वस्तु ही नहीं है। तो कि जिसका हम अवलंबन ले ये हमारी वस्तु है, जो अवलंबन लेने योग्य नहीं है वो वस्तु ही नहीं। जैसे दूसरे पदार्थ है तो अवलंबन लेने योग्य नहीं है तो वस्तु नहीं है, हमारे लिए अवस्तु है। चाहे भगवान हो, चाहे कुछ भी हो, सारा जगत पड़ा है, क्षेत्र हमारे लिए अवस्तु है, हमारी आत्मा ही वस्तु है। उसमें तो आर्गुमेंट ये है क्या कि गुण तो अलग नहीं कर सकते, इसलिए हमारे वस्तु तो है ना। कहते कि ये वस्तु है, ये अध्यात्म का प्रकरण है, जिसका आधार अध्यात्म से लिया जाता है, वही आध्यात्मिक वस्तु तत्व निर्विकल चेतन वस्तु है। जो भेद है, पर्याय है, वो अवस्तु है, वस्तु नहीं है। जो हमारे लिए वो वस्तु नहीं है, तो उसको नहीं देखेंगे। ऐसे प्रवचन करते थे, अवस्तु तो नहीं, तो कहने अवस्तु है, इसलिए हमने उसको व्यवहार करके निकाल दिया। तो उसे कैसा है, उसका व्यवहार कैसे कहा, कैसे कहा जा सकता है। उसका समाधान यह है कि यह ठीक है, परंतु यह द्रव्य दृष्टि से अभेद को प्रदान करके उसने किया है। यह ठीक है, मैंने एक जानने की अपेक्षा से ठीक है, अवलंबन लेने की अपेक्षा से वो ठीक भी नहीं है। तो गुरुदेव तो बड़ा दो प्रवचन करते थे, वैसे के शैली से भी आगे जाते थे, तो ठीक है ऐसा नहीं लेते थे, वो तो है वस्तु ही है, ऐसा करते रहते थे। अभेद दृष्टि में भेद को गौण कहने से ये भेद भली भांति मालूम हो सकता है, इसलिए भेद को गौण करके उसे व्यवहार कहा है। यहाँ यह अभिप्राय है, देखो अभिप्राय की मुख्य बात से बात करते हैं, यहाँ यह अभिप्राय है कि भेद दृष्टि में तो भेद तो दिशा नहीं होती, प्रयोजन तो भेद तो दिशा का है, शांति का है, तो भेद दृष्टि में तो भेद तो दिशा नहीं होती, पर रागी के विकल्प होते रहते हैं, इसलिए जहां तक रागादी नहीं हो, निर्विकलता नहीं हो, नहीं हो जाते वहां तक भेद को गौर करके अभेद रूप निर्विकल्प अनुभव कराया गया है, यही प्रयोजन है। यही पर बदलाव कराने का यहाँ प्रयोजन है। तो यहाँ कहते कि निर्विकल्प मात्र चैतन्य वस्तु का तत्व है, तो कहता है चैतन्य भाव के विभव अपने स्वरूप को व्यापनशील है, व्यापक रूप से अपने स्वरूप में रहा हुआ है और विशुद्ध और कैसा है कि विशुद्ध है सर्व कर्म की उपाधि से रहित है। तो उपाधि इसमें स्वरूप ही निरुपाधिक है। जब हम स्वरूप से निरुपाधिक है तो हम उपाधि करें क्यों और किस किस की करें, क्योंकि करने लायक
Thank you.